एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो बाहर की दुनिया की नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर की है। एक ऐसी दुनिया जो खरबों छोटी जिंदगियों से बनी है, हमारी कोशिकाओं की दुनिया।
जी हाँ, बिल्कुल।
और इस सफर में हमारे गाइड हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और उनकी बहुत ही चर्चित किताब द सॉन्ग ऑफ द सेल, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन।
सही।
और जैसा आपने कहा, ये किताब सिर्फ बायोलॉजी का पाठ नहीं है बल्कि एक कहानी है, हमारे होने की कहानी, हमारी सेहत की और शायद हमारे भविष्य की भी।
और आज ये समझना शायद और भी जरूरी हो गया है,
हाँ
क्योंकि हम दवाइयों के मतलब चिकित्सा के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम कोशिकाओं को सिर्फ समझ नहीं रहे,
बल्कि उन्हें बदल भी रहे हैं।
हाँ, उन्हें बदलना सीख रहे हैं। और ये चीज बीमारियों के इलाज से लेकर वेल इंसान होने के मायने तक सब कुछ बदल सकती है।
बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? लेखक से।
हाँ, जरूरी है। पहले इस कहानी के जो सूत्रधार हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि उनका जो नजरिया है वो इसे बहुत अनोखा बनाता है।
सही कहा। सिद्धार्थ मुखर्जी सिर्फ एक लेखक नहीं है, वो एक प्रैक्टिसिंग कैंसर डॉक्टर हैं, मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी वो सीधे मरीजों का इलाज करते हैं। और साथ ही वो एक जाने माने स्टेम सेल बायोलॉजिस्ट भी हैं, लैब में रिसर्च करते हैं।
और पुलित्जर पुरस्कार भी जीत चुके हैं अपनी पिछली किताबों के लिए।
हाँ, कैंसर पर, जीन्स पर। और उनकी ट्रेनिंग भी देखिए, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, मतलब टॉप इंस्टीट्यूशंस।
तो ये एक कमाल का संगम है ना।
है ना?
एक तरफ तो लैब का वो ठंडा सटीक विज्ञान, और दूसरी तरफ मरीज के बिस्तर के पास की वो गर्मजोशी, वो चिंता, वो उम्मीद।
बिल्कुल। और यही जो दोहरा अनुभव है लैब का और क्लिनिक का, यही उन्हें कोशिकाओं की कहानी को सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि दिली तौर पर समझने और समझाने की ताकत देता है।
हाँ, वो विज्ञान की मुश्किल बातों को भी इंसानी कहानियों से जोड़ देते हैं।
एग्जैक्टली। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि कोशिका क्या है बल्कि ये भी महसूस कराते हैं कि कोशिका होना क्या होता है और जब उनमें गड़बड़ी होती है तो इंसानों पर क्या बीतती है।
तो फिर इस किताब पर आते हैं, द सॉन्ग ऑफ द सेल। आखिर ये है किस बारे में, मतलब अगर एक लाइन में कहना हो तो?
एक लाइन में तो मुश्किल है, पर इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी मगर सबसे जरूरी इकाई वो कोशिका है, सेल।
जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स।
हाँ, हमारे शरीर का हर काम, हर सोच, हर बीमारी, सब कुछ इन्हीं कोशिकाओं के लेवल पर शुरू और खत्म होता है।
अच्छा।
और किताब का जो बड़ा तर्क है वो ये कि मेडिकल साइंस अब अपने इतिहास के शायद सबसे बड़े बदलावों में से एक से गुजर रहा है।
ओके। किस तरह का बदलाव?
हम अब सिर्फ अंगों जैसे दिल या लिवर या लक्षणों जैसे बुखार या दर्द, इनकी इलाज पर फोकस नहीं कर रहे हैं बल्कि बीमारी की असली जड़ तक जा रहे हैं। मतलब कोशिका के लेवल पर क्या गलत हो रहा है उसे समझने और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, तो ये जड़ तक जाने वाली बात है।
हाँ, और मुखर्जी हमें कोशिका की पूरी कहानी सुनाते हैं। मतलब 17वीं सदी में जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क में देखा था,
हाँ, वो सेल नाम उन्होंने दिया था।
राइट, वहां से लेकर आज की दुनिया तक जहां हम कैंसर से लड़ने के लिए अपनी ही इम्यून कोशिकाओं को जेनेटिकली बदल रहे हैं, मतलब पूरा सफर।
और किताब का नाम भी बहुत अच्छा है, कोशिका का गीत, द सॉन्ग ऑफ द सेल।
हाँ, ये उन खरबों कोशिकाओं के आपसी तालमेल, उनके उस जटिल डांस की तरफ इशारा करता है जिससे जीवन का संगीत बनता है।
कभी सुरीला यानी सेहत,
और कभी बेसुरा यानी बीमारी।
सही। और ये किताब सिर्फ डॉक्टरों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, है ना?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने शरीर, अपनी सेहत और आने वाले कल के विज्ञान को समझना चाहता है। मुखर्जी ने इसे काफी दिलचस्प बनाया है।
तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं ये कहानी कैसे खुलती है किताब में।
बिल्कुल। तो शुरुआत होती है खोज से। कैसे? जैसा हमने कहा, 1600 के दशक में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क में वो छोटे छोटे खाली कमरे देखे।
सेल्यूले या छोटे कमरे।
हाँ, और उन्हें सेल यानी कोठरी नाम दिया। फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए,
अच्छा,
जिन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से पानी की एक बूंद में पूरी की पूरी एक दुनिया देख ली। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मतलब वो अदृश्य दुनिया का दरवाजा खुलने जैसा था।
अरे वाह, ये तो बहुत ही रोमांचक रहा होगा उस समय।
बिल्कुल। और फिर 19वीं सदी में जर्मन डॉक्टर रुडोल्फ विर्चाउ का वो क्रांतिकारी विचार आया।
हाँ, वो ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला।
एग्जैक्टली। यानी हर कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही पैदा होती है।
ये सुनने में आज शायद बहुत ऑब्वियस लगे, लेकिन उस वक्त तो इसने जीवन की उत्पत्ति के बारे में सदियों पुरानी सोच को पलट दिया होगा।
हाँ, इसने बताया कि जीवन अचानक पैदा नहीं होता, बल्कि लगातार चलता रहता है कोशिका से कोशिका तक।
एक निरंतरता है।
सही। इसके बाद किताब हमें कोशिकाओं की हैरान करने वाली विविधता दिखाती है, डाइवर्सिटी।
अच्छा,
मतलब
कैसे एक ही बेसिक डिजाइन से निकली कोशिकाएं शरीर में इतने अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज हो जाती हैं।
जैसे
सोचिए, दिमाग में संदेश ले जाने वाली वो लंबी धागे जैसी न्यूरॉन कोशिका, या दिल की धड़कन पैदा करने वाली मांसपेशी कोशिका मसल सेल, या खून में ऑक्सीजन ढोने वाली छोटी सी लाल रक्त कोशिका।
है तो सब कोशिकाएं ही, पर काम कितने अलग।
हाँ, सब एक ही ब्लूप्रिंट से बनी है, पर विशेषज्ञता देखिए।
ये तो बिल्कुल एक बड़े शहर या समाज जैसा हो गया।
हाँ, जहाँ अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं और सब मिलकर शहर को चलाते हैं।
बिल्कुल सही उपमा है। शरीर भी इन विशेषज्ञ कोशिकाओं के आपसी सहयोग और श्रम विभाजन, मतलब डिविजन ऑफ लेबर, से ही चलता है। हर कोशिका अपने हिस्से का काम करती है, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह।
पर इस शहर में रक्षा का इंतजाम भी तो चाहिए होगा, कोई गार्ड वगैरह।
बिल्कुल। और यहीं पर किताब इम्यून सिस्टम, यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की बात करती है, हमारी गार्डियन सेल्स।
गार्डियन सेल्स जैसे?
जैसे टी सेल्स और बी सेल्स, ये कमाल की कोशिकाएं हैं। ये लगातार गश्त लगाती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, और अपने शरीर की कोशिकाएं और पराए बैक्टीरिया, वायरस या फिर कैंसर सेल के बीच फर्क करना सीखती हैं।
अच्छा, मेमोरी भी होती है इनमें।
हाँ, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। और यहीं से आज की कुछ सबसे क्रांतिकारी इलाजों का रास्ता खुलता है,
जैसे कि?
जैसे कार टी सेल थेरेपी। किताब में एमिली व्हाइटहेड नाम की एक बच्ची की कहानी है। उसे ल्यूकीमिया था, सारे इलाज फेल हो चुके थे। तो कार टी थेरेपी में डॉक्टरों ने क्या किया, उसकी अपनी टी सेल्स को लैब में जेनेटिकली बदला,
मतलब उनको मॉडिफाई किया।
हाँ, समझिए कि उन इम्यून सैनिकों को कैंसर को पहचानने और मारने के लिए खास हथियार दिए गए।
अच्छा, और फिर?
और फिर उन बदली हुई सेल्स को वापस उसके शरीर में डाला गया, और ये थेरेपी कामयाब रही, वो बच्ची बच गई।
अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। मतलब हम अब सिर्फ बाहर से दवा देने के बजाय शरीर की अपनी कोशिकाओं को ही एक तरह से दवा बना रहे हैं।
एग्जैक्टली। जैसे हम शरीर के सिपाहियों को खास ट्रेनिंग और हथियार देकर दुश्मन से लड़ने भेज रहे हो।
लेकिन जीवन है तो मृत्यु भी है, कोशिकाएं भी मरती होंगी।
बिल्कुल। किताब का एक अहम हिस्सा कोशिका विभाजन और उसकी मृत्यु के कार्यक्रम, जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं, उस पर है। ये एक तरह का प्रोग्राम्ड सेल डेथ है।
प्रोग्राम्ड डेथ मतलब जरूरी है ये?
हाँ, शरीर के संतुलन के लिए जरूरी है कि पुरानी या खराब कोशिकाएं हट जाएं। और यहीं पर मुखर्जी अपने खास विषय कैंसर पर आते हैं,
उनका स्पेशलाइजेशन।
हाँ,
वो बताते हैं कि कैंसर एक तरह से कोशिकाओं का विद्रोह है।
रेबेलियन।
विद्रोह किसके खिलाफ?
शरीर के नियमों के खिलाफ। ये वो कोशिकाएं हैं जो समाज शरीर के नियमों को तोड़ देती हैं, मरने से इनकार कर देती हैं, मतलब एपोप्टोसिस को नाकाम कर देती हैं।
अच्छा।
और बस अपनी संख्या बढ़ाती जाती हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से, भले ही इससे पूरे शरीर को नुकसान हो।
इसे वो शायद विश्वासघात कहते हैं किताब में।
हाँ, सेलुलर बिट्रेयल, कोशिका का अपने समुदाय के साथ विश्वासघात। और इसी हिस्से में बुढ़ापे की भी बात होती है, कैसे उम्र के साथ कोशिकाओं की मरम्मत करने और खुद को नया बनाने की क्षमता कम होती जाती है।
लेकिन क्या शरीर में मरम्मत और नवीनीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है?
है, बिल्कुल है। किताब ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को शुरुआती सेल्युलर थेरेपी मानती है।
अच्छा, जहां एक इंसान की कोशिकाएं दूसरे की जान बचाती है।
हाँ, और फिर आती हैं स्टेम सेल्स की रोमांचक दुनिया।
स्टेम सेल्स? हाँ, इनके बारे में काफी सुना है।
ये वो मास्टर कोशिकाएं हैं जिनमें शरीर के किसी भी तरह की कोशिका बनने की क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है।
अच्छा, तो इनसे क्या उम्मीदें हैं?
उम्मीद है कि इनसे पार्किंसंस, डायबिटीज या दिल की बीमारियों में जो टिश्यू खराब हो जाते हैं, उन्हें रिप्लेस या रिपेयर किया जा सकेगा।
इस भ्रूणीय स्टेम सेल हो या वयस्क स्टेम सेल, दोनों पर रिसर्च चल रही है।
IVF तकनीक का भी जिक्र है,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
हाँ, जो दिखाता है कि हम जीवन के बिल्कुल शुरुआती चरण में कोशिकाओं के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं।
तो किताब खुश से शुरू होकर इम्यून सिस्टम, कैंसर और अब स्टेम सेल्स तक आ गई। अंत किस तरफ जाता है?
अंत हमें भविष्य की ओर ले जाता है, न्यू ह्यूमन, नए इंसान की अवधारणा पर।
न्यू ह्यूमन, ये क्या है?
यहाँ बात होती है क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों की।
जीन एडिटिंग, हाँ, ये भी बहुत सुनने में आता है।
ये तकनीकें कमाल की हैं। ये डीएनए को अभूतपूर्व सटीकता से बदलने की ताकत देती हैं। समझिए जैसे किसी किताब के टेक्स्ट में जाकर आप कोई गलत शब्द ठीक कर दें।
अच्छा, इतना सटीक?
हाँ, इससे सिकल सेल अनीमिया जैसी कई जेनेटिक बीमारियों के इलाज की उम्मीद जगी है।
ये तो बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, लेकिन यहीं पर मुखर्जी बड़े नैतिक सवाल भी उठाते हैं।
एथिकल क्वेश्चंस?
जैसे?
जैसे बीमारियों का इलाज करना एक बात है, पर क्या हम इस ताकत का इस्तेमाल इंसान की क्षमताओं को बढ़ाने, मतलब एनहेंसमेंट के लिए करेंगे?
जैसे ज्यादा इंटेलिजेंट या ज्यादा मजबूत बनाने के लिए?
हाँ, क्या हम अपने बच्चों के जीन चुन सकेंगे? ये क्षमता हमें सिर्फ बीमारियों से लड़ने वाला नहीं बल्कि जीवन को डिजाइन करने वाला बना रही है।
ये तो बहुत गहरा सवाल है। इसकी सीमाएं क्या हों?
बिल्कुल, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। वाकई ये किताब कई परतों में खुलती है और बहुत कुछ सोचने को देती है। अगर हम इसके कुछ मुख्य संदेशों या थीम्स को समेटने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो है शरीर एक समाज है।
हाँ बिल्कुल, पहला थीम शरीर एक समाज, सहयोग और विश्वासघात का खेल। हमारा स्वास्थ्य इसी बात पर टिका है कि ये खरबों कोशिकाएं कितनी अच्छी तरह तालमेल में काम करती हैं।
और बीमारियां तब होती हैं जब ये तालमेल बिगड़ता है।
हाँ, जब कुछ कोशिकाएं इस सामाजिक समझौते को तोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगती हैं, जैसे कैंसर में, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है।
दूसरा थीम, हर बीमारी की जड़ सेलुलर है, मतलब कोशिका के स्तर पर ही कुछ गड़बड़ होती है।
सही, चाहे वो इन्फेक्शन हो, डायबिटीज हो, दिल की बीमारी हो या कैंसर, आखिर में प्रॉब्लम सेलुलर लेवल पर ही होती है। उसके काम करने के तरीके में कुछ खराबी आ जाती है।
और इस नजरिए से हमें बीमारियों को समझने और उनके इलाज ढूंढने का एक ज्यादा फंडामेंटल तरीका मिलता है ना?
हाँ बिल्कुल, जैसे भारत में डायबिटीज या हृदय रोग जैसी आम समस्याएं हैं, उन्हें भी अगर हम सेलुलर लेवल पर समझें तो शायद बचाव और इलाज के बेहतर रास्ते निकलें।
तीसरा थीम, जीवित दवाओं का उदय, सेल्युलर थेरेपी की क्रांति। ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा।
हाँ, कि हम केमिकल वाली गोलियों से आगे बढ़कर अब ऐसी थेरेपी की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ इंजीनियर की हुई जीवित कोशिकाएं ही दवा का काम करती हैं।
कार टी, स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, ये सब।
हाँ, ये सब इसी नई वेव का हिस्सा है और ये इलाज ज्यादा टारगेटेड और पर्सनलाइज हो सकते हैं।
लेकिन ये सवाल भी है कि ये नई महंगी थेरेपी भारत जैसे देश में कब और कितनों के लिए उपलब्ध होंगी?
हाँ, एक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट का मुद्दा तो है ही। चौथा थीम, वादा भी खतरा भी, यानी नैतिकता का सवाल।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। कोशिकाओं को बदलने की ये ताकत जहाँ बीमारियों को मिटाने का सपना दिखाती है,
वहीं गहरे नैतिक सवाल भी खड़े करती है। इलाज और इंसान की क्षमता बढ़ाने, एनहांसमेंट के बीच की वो धुंधली रेखा।
हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या हम प्रकृति के काम में दखल देने के लिए तैयार हैं?
ये बड़े सवाल हैं। इन तकनीकों पर भारत में भी खुली बहस और सोच समझ कर नियम बनाने की जरूरत होगी, जाहिर है।
बिल्कुल, किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, कुछ कोट्स जैसे।
हाँ, कई हैं। अगर कुछ मुख्य विचारों को देखें तो,
पहला मुख्य विचार, हर बीमारी असल में कोशिका की बीमारी है। मरीज को ठीक करने के लिए हमें पहले कोशिका को समझना और ठीक करना होगा।
ये विर्चो की सोच को आगे बढ़ाता है, मतलब लक्षणों को दबाने की बजाय जड़ पर काम करना।
सही।
दूसरा मुख्य विचार, कोशिका एक अजीब विरोधाभास है। ये अपने आप में पूरी भी है और पूरी तरह सामाजिक भी। जीवन इसी अकेलेपन और साथ रहने के तनाव भरे संतुलन का नाम है।
ये कोशिका के उस ड्यूअल नेचर को पकड़ता है,
उसे खुद भी सर्वाइव करना है और शरीर के लिए भी काम करना है।
हाँ, और सेहत इसी बैलेंस में है। तीसरा मुख्य विचार, कार्टी या क्रिस्पर जैसी थेरेपी के साथ हम सिर्फ दवा नहीं दे रहे, हम मरीज को उसी के शरीर का एक बदला हुआ ज्यादा शक्तिशाली संस्करण दे रहे हैं। ये हमें अनजाने में ही नए इंसान का निर्माता बना रहा है। ये बात आज की मेडिकल साइंस की ताकत और उसकी जिम्मेदारी दोनों को रेखांकित करती है।
बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। तो ये सब सुनने में बहुत गहरा और शायद थोड़ा मुश्किल भी लगे, पर सवाल ये है कि इन बातों का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है, मतलब आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है?
वेल, मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये है कि इससे हमारी हेल्थ लिटरेसी, मतलब स्वास्थ्य को लेकर समझ बेहतर होती है।
कैसे?
जैसे जब हम अगली बार अखबार में इम्यूनोथेरेपी या स्टेम सेल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे या डॉक्टर किसी टेस्ट की बात करेंगे तो हमें थोड़ा बेहतर अंदाजा होगा कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है।
हम सिर्फ कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे।
हाँ, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि थोड़ा समझने वाले बन सकते हैं।
अच्छा पॉइंट है। दूसरा, ये हमें एक ज्यादा जागरूक मरीज या देखभाल करने वाला बनाता है, इन्फॉर्म्ड पेशेंट।
बिल्कुल, अगर हमें या हमारे किसी अपने को कोई गंभीर बीमारी होती है तो हम डॉक्टरों से ज्यादा बेहतर गहरे सवाल पूछ सकते हैं,
इलाज के विकल्पों को, उनके पीछे के साइंस को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं।
हाँ, जैसे अगर कार टी जैसे किसी नए इलाज का विकल्प सामने आता है तो हम उसके फायदे नुकसान पर ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा कर सकते हैं, सिर्फ हाँ या ना कहने के बजाय।
सही कहा। तीसरा,
तीसरा ये हमें नैतिक मुद्दों पर सोचने के लिए एक आधार देता है, एक फ्रेमवर्क।
जैसे जीन एडिटिंग सही है या गलत, स्टेम सेल रिसर्च की सीमाएं क्या हो।
हाँ, इन सवालों पर अपनी राय बनाने के लिए सिर्फ भावनाओं के बजाय थोड़ी वैज्ञानिक समझ होना जरूरी है। ये किताब वो समझ देती है।
तो ये हमें भविष्य की स्वास्थ्य नीतियों पर सोचने और बहस में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार करती है।
बिल्कुल। और चौथा, शायद सबसे निजी स्तर पर,
ये
हमें खुद को देखने का एक नया नजरिया देता है।
अच्छा, किस तरह?
ये सोचना कि हम एक व्यक्ति नहीं बल्कि खरबों कोशिकाओं का एक डायनामिक, लगातार बदलता हुआ समुदाय है।
अरे वाह,
ये अपने आप में एक अद्भुत एहसास है। ये मैं की उस फिक्स्ड धारणा को चुनौती देता है। हम एक सतत बहती नदी की तरह हैं, कोशिकाओं की एक सिम्फनी।
क्या बात है, ये तो बहुत ही खूबसूरत नजरिया है।
तो इस पूरी चर्चा से अगर मैं अपने सबसे बड़ी सीख कहूँ तो वो ये है कि मेडिकल साइंस एक बहुत बड़े मोड़ पर है। हम सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं कर रहे, हम जीवन के कोड को ही पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। ये एक जबरदस्त ताकत है जिसके साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें सोचना होगा कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं।
हाँ, ये जिम्मेदारी वाली बात बहुत अहम है। और मेरे लिए सबसे यादगार बात कोशिका का वो दोहरा चरित्र है, उसका अकेलापन और उसका सामाजिक होना, इंडिपेंडेंस और कम्युनिटी। हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी सेहत, सब कुछ इसी संतुलन पर टिका है। ये किताब इतिहास, विज्ञान, इंसानी कहानियों और भविष्य की झलक को इतनी खूबसूरती से पिरोती है।
हाँ?
कि लगता है जैसे हम वाकई कोशिकाओं का वो जटिल और सुंदर गीत सुन रहे हों। और ये समझना कि ये गीत कैसे बनता है, ये खुद को और हमारे भविष्य को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
बिल्कुल सही कहा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।